आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर पहुंचा ये अभियान। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में लागू हो गया नया ड्रेस कोड, 15 अगस्त से नई पोशाक में नजर आएंगे अर्चक। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 15 अगस्त को प्रदेश के सभी जनपदों में लगाई जाएगी वंदे मातरम वाटिका। राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर किया जाएगा 150 पौधों का रोपण। और राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी, मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में निकाली गई तिरंगा यात्रा में जीपीओ और पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अयोध्या में गांधी पार्क के सामने से शुरू हुई यात्रा का शुभारंभ राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा ने किया। वहीं बाराबंकी में जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश राही तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। बिजनौर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मैनपुरी में अभियान के तहत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। फतेहपुर में स्कूली बच्चों ने 2 किलोमीटर लंबी तिरंगा मानव श्रृंखला बनाई। मऊ में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कानपुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचा है।
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगा अभियान घर घर पहुंच रहा है। मैं प्रदेशवासियों से कानपुर वासियों से अपील करता हूं, घर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर के अपने घर पर तिरंगा फहराएं और बिठोर के हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गढ़ रहा है, यहाँ से ऐसी शुरुआत करें कि अपना राष्ट्र प्रेम, अपना राष्ट्र प्रथम की भावना से हम घर घर जाएंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में अपने प्रदेश को नंबर एक पर ले जाने का काम करेंगे।
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद कानपुर देहात में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में स्कूली बच्चों और स्थानीय नागरिकों ने लगभग 1200 फीट लंबे तिरंगे के साथ हिस्सा लिया। प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बहराइच में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने तिरंगा अभियान के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
मैं धन्यवाद देता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी और उस विचारों को, उस सोच को, जो आज पूरे देश में एक साथ हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। पूरे देश भर के कोई गांव, गली, शहर, नगर कुछ भी नहीं बचेगा जहां तिरंगा ना हो। और ये सोच जो डेवलप हुई है, ये संदेह मुझे भारत के प्रति, अपने देश के प्रति एक करने के लिए, संगठित होने के लिए एक बढ़िया अवसर देती है।
अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था में बदलाव के क्रम में रामलला की सेवा में लगे सभी अर्चक अब एक समान ड्रेस में नजर आएंगे। धार्मिक समिति ने अर्चकों के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया है, जिसे 15 अगस्त से लागू किया जाएगा। धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि नए ड्रेस कोड के तहत सभी अर्चक पीत वस्त्र धारण करेंगे।
हमारी संत समिति ने निर्णय लिया है कि वो सूचीबद्ध जो यानी कि सिला हुआ वस्त्र ना हो, ऐसा रेशमी सिल्क का वस्त्र होगा, नीचे धोती और ऊपर उत्तरीय होगा। शरदकालीन ऋतु में ऋतु के अनुसार होगा वस्त्र, लेकिन कलर वही रहेगा, पीत वस्त्र में रहेंगे सभी लोग, ये तय किया गया है।
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुईं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के उस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी को आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया गया था। उच्चतम न्यायालय की वादसूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्यबागची एवं न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ इस मामले पर 17 अगस्त को सुनवाई करेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का 31वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। दीक्षांत समारोह में 34,947 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने विज्ञान और तकनीक की आवश्यकता पर बल दिया।
जल प्रबंधन हम लोगों ने 5 करोड़ का खर्च करके एक सुंदर भवन बनाया। इसमें 3 प्रकार का लोगों को हुनर सिखाया। एक 28 लाख रुपए का खर्च करके इसरो का बड़ा सेंटर लगाया। इसरो के चेयरमैन खुद देखने के लिए आए और हमारे बच्चों को तैयार किया। और आज 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चे जिस तरह उसका दिखाते समझाते हैं कि है क्या क्या टेक्नोलॉजी है, हम गगनयान के लिए क्या काम कर रहे हैं, चंद्रमा की धरती पर हम कैसे उतरे, ये सब आज इतने होशियार हो गए हैं, मैं जाकर तो मुझे भी समझाने लगता।
प्रदेश के वन विभाग की तरफ से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 15 अगस्त को सभी 75 जनपदों में वंदे मातरम वाटिका स्थापित की जाएगी। इसके लिए वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी दीपक कुमार ने बताया कि इस विशेष अभियान में आम नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होगी। एक रिपोर्ट।
प्रत्येक जनपद में एक चयनित स्थान पर 150 पौधों का रोपण किया जाएगा, जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकृति को समर्पित श्रद्धांजलि होगी। वंदे मातरम वाटिका में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप छायादार, फलदार और पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। अवध वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी सितांशु पांडे ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर कुकरैल पिकनिक स्पॉट में वंदे मातरम वाटिका को विस्तार दिया जाएगा। यहां एक अशोक चक्र बनाया गया है, इसकी 24 तीलियों के बाहर के क्षेत्र में अशोक के पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
रक्षाबंधन पर्व के लिए प्रदेश सरकार ने व्यापक परिवहन व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने 26 से 31 अगस्त तक प्रदेश में अतिरिक्त बसों के संचालन के निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि त्योहार से पहले और उसके बाद यात्रियों की संख्या को देखते हुए परिवहन निगम को अधिकतम बसों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर यात्रियों की अधिक आवाजाही के मद्देनजर इस दिशा में अतिरिक्त सेवाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है। यात्रियों की मांग के अनुसार लखनऊ और कानपुर समेत विभिन्न प्रमुख गंतव्यों के लिए भी अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ में गोमती नदी को सीवेज प्रदूषण से मुक्त करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत व्यापक कार्य योजना तैयार की है। शहर से निकलने वाले सीवेज को सीधे गोमती नदी में पहुंचने से रोकने के लिए नालों की टैपिंग, फ्लो डायवर्जन, एसटीपी की क्षमता बढ़ाने और नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। ड्रोन सर्वे के बाद गोमती नदी में गिरने वाले 45 नालों की पहचान हुई है। राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक जोगिंदर सिंह ने बताया कि विभाग ने नए नालों की पहचान की है, जिन्हें जल्द शोधित किया जाएगा। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय होने के बाद कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। गोरखपुर में आज तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अयोध्या और आसपास के जिलों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उधर बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के चलते कई नदियां उफान पर हैं। बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा नदी, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी व अयोध्या में घाघरा खतरे के निशान के करीब बह रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर पहुंचा ये अभियान। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में लागू होगा नया ड्रेस कोड। 15 अगस्त से नई पोशाक में नजर आएंगे अर्चक। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 15 अगस्त को प्रदेश के सभी जनपदों में लगाई जाएगी वंदे मातरम वाटिका। राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर किया जाएगा 150 पौधों का रोपण। और राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।